Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हमारी जिंदगी में नाकामयाबी होती है तो हम एक ऐसे दोहराहे पर खड़े होते हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है खुशी की ओर, आपकी मंजिल की ओर और आपकी हिम्मत की ओर, और दूसरा रास्ता जाता है निराशा की ओर और आपको हताश करता है। हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते जाना है और किसे अपनी मंजिल बनाना है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके चिन्मय जोशी जी, जो कि एक पायलट हैं और साथ ही साथ एक ड्रीम एक्टिविस्ट भी हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू ओम शांति
ब्रदर। हमारी जर्नी चल रही है कि किस तरह से फेलियर को फाइट बैक करें हम, किस तरह से। मैं थोड़ी सी इस चीज़ को बदलना चाहूँगी, इस शब्द को शुरुआत में ही, कि एक ये एक ऐसा तरीका है ज़िंदगी जीने का जिसको हम एक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्योंकि कामयाबी की ओर बढ़ने के लिए अगर हम फेलियर को एक प्रोसेस समझकर चले और आगे बढ़े तो हम कभी भी नाकामयाब फेस ही नहीं करेंगे।
So true.
आपको क्या लगता है?
That is actually बहुत beautiful तरीका है जीवन जीने का
जी।
क्योंकि कई बार हम अपने आप को एक ट्रैप में खुद ही धकेल देते हैं कि ये फेलियर है और ये अल्टीमेट मेरा जीवन का एंड है, और वो खुद ही अपने आप को एक जैसे ट्रैप में बंद कर देते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं, जबकि वो दरवाजे हमने खुद अंदर से बंद किए होते हैं।
करेक्ट,
राइट। पर अगर हम ये जान ले कि एक प्रोसेस है, मेरी ये जर्नी का एक पाथ का एक प्रोसेस है,
करेक्ट,
जिस प्रोसेस से मुझे बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि जब कभी भी कोई फेल होता है तो उससे कुछ ना कुछ तो चीजें हम सीखते ही सीखते हैं।
बिल्कुल,
राइट। तो ये अगर हम जान ले कि मैं सीखने वाला हूँ इस चीज से, राइट, और हर रोज कुछ ना कुछ सीखने वाला हूँ, राइट, तो ये एक अलग ही नजरिया हो गया जीने का। और मैं फेलियर्स को तब फेलियर्स नहीं लूंगा, उसको एक लेसन की और तरीके से लूंगा कि ये एक फेलियर नहीं है, इट्स अ लेसन। और इसीलिए कहते हैं कि ईदर यू सक्सीड और यू लर्न, राइट। आप जब कोई ट्राई करते हो अपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में, अपने जीवन को खुश रखने के लिए
जी,
या फिर कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए आप मेहनत करते हो, और कभी कभार जब आपको सेटबैक आता है तो आपको जो उस चीज से जो लेसन मिलता है वो शायद आप जब शायद से आपने कभी नहीं सीखा होता, अगर आपको इजीली सब कुछ मिल गया होता।
बिल्कुल,
यू नो व्हाट आई मीन। तो उस चीज को मैं सेटबैक या फेलियर ना समझकर उसको एक लेसन की तरह कैसे लूं। और किसी ने खूब कहा है कि लाइफ ही एक ऐसी परीक्षा है जहां पे हम पहले सीखते हैं, पहले लेसन को सीखते हैं, राइट, और फिर हमको उस लेसन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम जान लेते हैं, राइट। नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है कि सब कुछ पहले परीक्षा हमने दे दी, फिर हमको सर्टिफिकेट मिल गया, बात खत्म
जी।
पर ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो फेलियर, जिसकी सीख से मैं लाइफ टाइम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ।
सो ट्रू।
फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कुछ नई चीज ट्राई कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस ही ले लो, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, राइट, वेट लूज करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए, और सिर्फ एक वीक या एक महीना ट्राई करने के बाद वो गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलता और वो ये सोचते हैं कि ये कभी अभी होना ही नहीं है, राइट। पर अगर उसकी बजाय मैं ये सोचूं कि किस वजह से नहीं हो रहा है, मैं इसमें से क्या लर्न कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ ताकि मुझे सक्सेस मिले, तो उस प्रोसेस में मैं ये सीखूंगा कि मैं अगर ये इस टाइप का डाइट मैंने ट्राई किया तो वो काम नहीं हुआ, इस टाइप का एक्सरसाइज मैंने ट्राई किया तो वो नाकामयाब रहा, पर अभी मैं और क्या ट्राई कर सकता हूँ जिससे मैं खुशी की और करेज की और कामयाबी की और, जैसे आपने कहा, उस तरफ में जा सकूं।
ये बिल्कुल आप बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया। जैसे मनी प्लांट होता है, वो स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन में नहीं उगता, उसे जिस डायरेक्शन में आप मोड़ेंगे वो उस तरह में ढलने लगता है।
अच्छा,
उसी तरह से जब जिंदगी को आप ढालते हैं अपनी तरह से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप कामयाब ही होंगे, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आगे बढ़ने का। तो ये अगर हम उस चीज को डायरेक्शन देते जाए और उसे खूबसूरती से अपनी जिंदगी में पिरोते जाए तो वो एक ऐसा पेड़ बनेगा जिसके अंदर में नींव बहुत स्ट्रांग होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति कामयाबी की ओर आगे बढ़ता है तो हम तो ये देखते हैं कि अरे ये तो इतना कामयाब होगा, हो गया है, मुझे भी इतना कामयाब बनना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने कितने तरीके अपनाए तब जाकर के वो इस लेवल पर पहुंचा है, और हम इजी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करने लगते हैं। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है?
कई दफा हम सक्सेस को सिर्फ आउटवर्ड ग्रोथ की तरह लेते हैं।
करेक्ट,
कि जो बाहर दिखता है, जो फ्लैशी चीजें दिखती है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है,
जी
वो करोड़पति बन गया, या फिर वो बहुत फेमस हो गया, स्टार बन गया, या फिर उनको एक बहुत अच्छा पोजीशन मिल गया, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही हम तय करके सक्सेस को डिफाइन करते हैं।
करेक्ट,
पर उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने कितना एफर्ट्स दिया, उन्होंने कितना डेडिकेशन दिया, वो नहीं देखते। राइट, माइकल जॉर्डन जो कि यूएसए के सबसे अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है,
ओके,
और उनको लेजेंड माना जाता है, और वो बहुत ही अच्छा चीज एक बोलते हैं कि मैं इतना सफल इसीलिए हुआ अपने हर एक शॉट में क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। राइट, इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा शॉट्स प्राप्त किए हैं। राइट, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इतना ज्यादा असफल नहीं होता तो मैं इतना ज्यादा सफल भी नहीं होऊंगा।
राइट,
और सेम थिंग वो कहते हैं कि अगर किसी को सफल होना है तो सिर्फ वो मेरे जितना असफल होके दिखाए और वो मेरी तरह सफल भी हो जाएंगे।
वाओ, राइट, दिस इज सो ब्यूटीफुल।
सो सेम थिंग कि मुझे ये एक सिर्फ एक चीज के ऊपर अकड़े रहने से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, मुझे अगेन एंड अगेन वो शॉट्स लेने हैं बास्केटबॉल की तरह, ताकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक चीज में मैं इतना माहिर हो जाऊंगा कि वो मेरा एक एक विशेषता बन जाएगी मेरी।
yeah.
वो एक मेरी यूएसपी बन जाएगी।
so true.
Right? मेरी विशेषता एक एक यूनिक थिंग बन जाएगी।
जी।
Right? और किसी ने खूब कहा है कि एक चीज में आपको माहिर होने के लिए मिनिमम आपको 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे की डेडिकेशन देनी पड़ती है, और कभी कभार हम सिर्फ 5-10 घंटे या फिर एक साल या दो साल रोज एक एक घंटे, तो ये हमने अगर डेडिकेशन दिया 10,000 घंटे को और फिर हम उसको ट्राई करके फिर हम दुनिया में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको उसमें सफलता ज़रूर ज़रूर मिलती है, और ये टाइम एंड अगेन लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। राइट, और किसी ने खूब कहा है कि इट टेक्स 10 इयर्स ऑफ एफर्ट टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। मींस आपको 10 साल का एफर्ट्स करना पड़ेगा ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए, और कभी कभार हम सिर्फ वो ओवरनाइट सक्सेस को देखते हैं, वो 10 साल के एफर्ट्स को नहीं देखते। राइट, सो सेम थिंग, सभी की अपनी अपनी जर्नी है, इट डजंट मीन कि हमको सिर्फ 10 साल के बाद ही मिलेगा। पर एट द सेम टाइम मुझे ये भी देखना है कि अगर मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ तो वो कितनी दे रहा हूँ और उसके रिटर्न में मैं कितना एक्सपेक्ट करता हूँ। कई कभार हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़े मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है कि मैंने इतना एफर्ट किया और मैं एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ। राइट, तो वो भी सही नहीं है। राइट, और कभी कभार मैं बहुत एफर्ट्स किया पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, पर मेरा ग्रोथ जो इंटरनल ग्रोथ है वो हुआ, मेरा रूट्स जो है, जैसे आपने कहा कि पेड़ का रूट्स जो है वो बहुत ही पावरफुल हुआ, मेरा कैरेक्टर जो है मेरा बहुत ही मजबूत हुआ, ताकि मेरी नींव अगर मजबूत हो तभी तो बिल्डिंग बहुत बड़ा बनेगा, राइट? सो सेम थिंग, मुझे ये सोचना है कि मैंने इससे लेसन क्या लिया, मेरी नींव मजबूत कैसे हुई, और फिर मेरा इंटरनल ग्रोथ कितना हुआ ताकि फ्यूचर में मेरा एक्सटर्नल ग्रोथ हो.
करेक्ट,
राइट?
जी, कुछ लोगों के बारे में मैंने ये देखा है कि वो लॉटरी के टिकट खरीदते हैं इस होप के साथ कि एक ही बार में मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी. और वो रेपिटेटिवली लेते रहते हैं, भले वो हर बार फेल होते हैं क्योंकि शायद किसी को लगता ही नहीं है वो लॉटरी, लेकिन वो जो एक होप रहता है, वो होप, उस होप को हम क्या नाम दें? क्योंकि कुछ लोगों को दिन रात मेहनत करके वो उस चीज़ को हार्ड मनी करके अर्न करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ लोगों को एक रात के अंदर चाहिए कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए. और वो फेलियर को बेसिकली देखना नहीं चाहते. तो उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक रात में अगर आप इतने पैसे एक साथ जमा कर लेंगे तो आप उस चीज़ को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे.
सो ट्रू.
लेकिन अगर आप फेलियर धीरे धीरे आपने महसूस किया है, आप नीचे से ऊपर की ओर आगे बढ़े हैं, तो आपको उसकी वैल्यू भी उतनी रहेगी.
ट्रू.
आपको क्या लगता है?
एब्सोल्युटली ट्रू. जब मैं लॉटरी की टिकट्स या फिर कोई ओवरनाइट करोड़पति बन गया या फिर मिलियनर बिलियनर बन गया, तो एक सर्वे हुआ है एक्चुअली उन लोगों का कि जिन्होंने एफर्ट्स बहुत कम किए और फिर ऐसे ही मिल गया टिकट,
इजी मनी.
तो दैट्स जस्ट वन वे ऑफ लुकिंग एट सक्सेस. एक्चुअली मनी इज नॉट द अल्टीमेट सक्सेस.
बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा जिंदगी की मंजिल नहीं है,
अल्टीमेट सक्सेस नहीं है, राइट?
अल्टीमेट सक्सेस
इट्स जस्ट एक पहलू है उसका, कि पैसे से आप कुछ खरीद सकते हो जिससे आपको थोड़ी बहुत खुशी मिल सकती है टेम्पररी. बट जस्ट लेट्स टेक उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिन्होंने लॉटरी की टिकट ली और उनको लॉटरी लगी, और ये सर्वे हुआ है कि विद इन 5 years उन लोगों ने जितना भी पैसा उन्होंने विन किया वो सारा पैसा गवा दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट जो है वो उस पैसे को हैंडल करने के लिए बड़ा ही नहीं था. राइट? इट्स लाइक आप जिम में जाते हो तो फिर पहले ही दिन आपको ट्रेनर कितने किलो का वजन देगा? 300 kgs?
नहीं,
नॉट रियली, राइट?
नहीं,
पहले दिन आपको 10 kgs, 5 kgs देगा, राइट? फिर आप एक्सरसाइज करोगे, अपने बॉडी को आप ट्रेन करोगे उस चीज को हैंडल करने के लिए, फिर इवेंचुअली 1-2 साल के बाद आप इतने केपेबल हो जाओगे कि आप 100-200 किलो आप उठा सकोगे. सेम थिंग विद द माइंड. अगर आपने मेहनत नहीं किया मन को बनाने में, मन को मजबूत करने के लिए, और आपने अपना कैरेक्टर डेवलप नहीं किया, राइट? तो कितना भी आपको सक्सेस मिले उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे.
बिल्कुल,
राइट? और इसीलिए शायद कई कबार बहुत फेमस लोग, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे बड़े लोग, बड़े बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट,
हस्तियां, राइट?
बिजनेसमैन,
वो लोग शायद इसीलिए उदास रहते हैं क्योंकि वो इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, राइट? और वो सोचते हैं कि वो अभी अगर वो गवा देंगे तो क्या होगा, राइट?
वो प्रेशर उनके ऊपर हमेशा बना रहता है.
एब्सोल्युटली, क्योंकि वो इंटरनल जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए किसी रीजन से, राइट? उसमें शायद उनकी गलती भी नहीं है, पर वो अगर ये जान ले कि अगर मैं इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो जाऊं और ऐसा बन जाऊं कि ताकि ये जो भी चीज़ें हैं टेम्पररी चीज़ें, उसको मैं एन्जॉय कर सकूं, और जो मैं हूं और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो दोनों अलग चीज़ें हैं.
करेक्ट,
राइट? सक्सेस एंड फेलियर वो दोनों एक्सपीरियंसेस हैं. वो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो दोनों से अलग हूँ. और अगर मैं जब अपने आप को जान लूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ्स है, जो मेरी मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरी कला है, जो मेरी टैलेंट्स है, वो अगर मैं जान लूँ तो शायद मैं ये सब कुछ भी गवा दूँ, जो भी मेरे पास है शायद मैं सब कुछ गवा दूँ, फिर भी मेरी काबिलियत से मैं फिर से खड़ा कर सकता हूँ. जब ये विश्वास खुद में आ जाएगा तब जो सारा डर है, प्रेशर है, वो चला जाएगा, और तब कुछ भी आए मेरे पास तो मैं उसको इजीली हैंडल कर पाऊंगा, और बहुत ही मतलब एक्साइट भी नहीं हो जाऊंगा और बहुत ही निराश भी नहीं हो जाऊंगा. इट्स लाइक नॉर्मल है मेरे पास, मेरी सक्सेस मेरे लिए नॉर्मल है, ऐसा हो जाएगा.
ब्यूटीफुल. आई थिंक ये बहुत ही यूनिक बात आज आपने कही है कि सक्सेस और फेलियर इन दोनों को हमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस की तरह लेना है, ना कि हम फेल हो चुके हैं. रियलिटी ये है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें फेलियर आया है.
एग्जैक्टली.
और वो सिर्फ एक कुछ पलों का सफर है.
ट्रू.
मंजिल नहीं है.
ट्रू.
अब मैं जानना चाहती हूँ कि चलिए मैंने मान लिया कि ये मेरी मंजिल नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है और इस चीज़ को इतना तवज्जो अर्थात इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि हम पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएं. अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि कुछ लोगों को मैंने नोटिस किया है जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें हम या हम एक्टर्स की बात करें या बड़े डायरेक्टर्स, एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में जो पीक पे आज हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उन लोगों की ये खासियत होती है कि वो लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं. मैंने नोटिस किया है कि जब उनके ऊपर कोई सिचुएशन या क्राइसिस आता है या कोई तरह का सेटबैक आता है या कोई नाकामयाबी आती है तो वो बहुत मैच्योर तरीके से उसे हैंडल कर पाते हैं. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि उन लोगों ने इतना फेलियर को अपनी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस की तरह लेकर आगे बढ़ते गए तब वो एक ऐसे पायदान पर आ जाते हैं कि वो उसे हैंडल कर पाते हैं.
Absolutely.
और जो शुरुआत करते हैं, जैसे एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा है कि जब वो शुरुआत में चलना सीखता है तो सबसे पहले वो गिरता है इतनी ज़ोर से, शायद उसके घुटने पर भी लग जाएगी, लेकिन मम्मी टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो बच्चा फिर से उठता है और जब तक वो चलने नहीं लगता तब तक वो आगे बढ़ता ही रहता है और गिरता ही रहता है. ऐसे में आपकी क्या राय है? बेसिकली बार बार उठकर खड़े होना ये कितना ज़रूरी है?
सबसे पहले तो कि मुझे ये जानना है कि मुझे खड़े क्यों होना है,
राइट?
ये जानना ज़रूरी है.
क्योंकि
अगर मेरे पास रीज़न नहीं है और सिर्फ मैं ट्राई करता रहूं पर मुझे चाहिए क्या, प्राप्त क्या करना है मुझे?
वाओ, तो गोल क्या है वो देखना है.
Exactly, ताकि मैं गलत जगह पे अपना फोकस ना रखूं और गलत जगह पे मैं अपना एफर्ट्स ना दूं, राइट? एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि एक बार बिरबल रात को जा रहा था कहीं और एक आदमी कुछ चीजें ढूंढ रहा था वहां पे, कहीं पे जहाँ पे लाइट थी वहां पे. तो बिरबल ने उनको पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले मेरी अंगूठी घूम गई है इसलिए मैं अंगूठी ढूंढ रहा हूँ. तो बोले कहाँ घूम गई? तो बोले वो तो कहीं वहाँ दूर अंधेरे में गिरी है, घूम गई है. तो बिरबल ने पूछा आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे उजाला है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ. तो ये कई कबार ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाती है कि हम एफर्ट्स गलत जगह पे दे रहे हैं, जो कि हमारा रीजन है ही नहीं एफर्ट्स देने का जहाँ पे, राइट? तो मुझे ये तय भी करना ज़रूरी है कि अगर मैं एफर्ट्स दे भी रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ और इसके लिए मैं एंड रिजल्ट क्या चाहता हूँ, मेरा आउटकम क्या है, राइट? और कई कबार हम इतने दौड़ने लगते हैं और इतनी स्पीड से दौड़ने लगते हैं कि हम गलत डायरेक्शन पे इतने आगे निकल जाते हैं कि फिर वापस आने का भी मन नहीं करता. कि चलो अभी इस डायरेक्शन में इतने आगे निकल गए, अभी जो होगा देखा जाएगा, राइट? तो ये भी सही नहीं है. इट्स लाइक कि मुझे मूर्ति बनाना है पर मैं हथौड़ा और छेनी लेके किसी और जगह पे एफर्ट्स दे रहा हूँ जहाँ पे मुझे मूर्ति बनाना ही नहीं, राइट? सो सेम थिंग, कि फर्स्ट थिंग वो है कि मुझे उठना क्यों है और मुझे एफर्ट्स क्यों देना है. एंड देन उसके बाद द सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर मैं सही जगह पे बार बार हथौड़ा और छेनी लेके एफर्ट्स करूँगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस स्टोन से एक ब्यूटीफुल आइडल मूर्ति बना पाऊँगा, राइट? पर वो प्रोसेस है, वो थोड़ा पेनफुल है, पर वो एंड रिजल्ट है उसका, वो ब्यूटीफुल है,
करेक्ट,
राइट? और उस एंड रिजल्ट को मैं अगर माइंड में सेट करके फिर एफर्ट्स करूँगा तो चाहे थोड़े बहुत सेटबैक्स आए, थोड़ी बहुत पेन आए, तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे एफर्ट्स करता रहूंगा.
करेक्ट. आई थिंक दिस इज सो ब्यूटीफुल. इसे अगर हम अपनी जिंदगी के रास्ते पर लागू करें तो जैसे ईश्वर है वो हमें एक खूबसूरत मूर्ति बनाना चाहता है.
ट्रू.
हमें लगता है कि हमें तकलीफ दे रहा है, हम कई बार कहते हैं कि भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हो हमें, पर रियलिटी ये है कि वो हमें एक मूर्ति की तरह बनाना चाहता है।
True.
एक ऐसी मूर्ति जो खुद एक खुश मिजाज भी हो और खूबसूरत भी हो। उसे भी उतनी तकलीफ होती है जब वो छेनी और हथौड़े से मारे होते हैं, क्योंकि वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें तो तकलीफ होती ही है। लेकिन इस तकलीफ के आगे चल के जो मंजिल हमें मिलने वाली है, उसे हम गले लगाकर खुशी से ईश्वर को थैंक यू बोल सकेंगे।
एब्सोल्युटली।
आई थिंक ये जो आज की हमारी जर्नी रही है, इसमें हमने कई सारी नई बातों को जाना। हमने जाना कि अगर नाकामयाबी को हम एक प्रोसेस की तरह ले, अर्थात उसे एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन बनाएं जिससे धीरे धीरे हम आगे बढ़कर अपनी मंजिल के और करीब जा पाएं, तो यही हमारे लिए जीत है। और वो जो जर्नी है उसे ही हम मंजिल समझें, क्योंकि हर कदम पर मंजिल समाई है अगर आप कोई भी समस्या में अपने आप को आगे बढ़ा पाए तो।
एब्सोल्युटली ट्रू।
थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम।
यू वेलकम।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जिंदगी एक ऐसा रास्ता है जिसकी मंजिल ये हम खुद तय कर सकते हैं, भले ही कितने भी रुकावटें क्यों ना आए इस मंजिल की ओर, लेकिन हमें कभी भी हताश नहीं होना है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है दोस्तों, एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी मंजिल की ओर और भी ज़्यादा खुश मिजाज होकर पहुंचेंगे। भले कितनी भी रुकावटें, कितनी भी संकट क्यों ना आए, लेकिन वो जो एंड रिजल्ट है ना दोस्तों, वही तो हमारी मंजिल है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।